अध्याय 10 प्राचीन भारत में राजस्व या प्राचीन भारत में राजकर। भूमिका सार्वजनिक वित्त का महत्व और सिद्धांत। प्राचीन भारत में राजकीय आय और व्यय का विषय महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बहुत बड़ा एवं पेचीदा भी है। इसका कारण देश का विशाल आकार और उसके विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रथाएं तथा आय के भिन्न भिन्न स्रोत थे। विभिन्न भागों में अति प्राचीन काल से राजा को अथवा राज्य को दिए जाने वाले कर व मशहूल न्यूनाधिक नियत हो गए थे, जिन्हें धर्म सूत्रों व धर्म शास्त्रों के लेखकों ने अपने ग्रंथों में मान्यता प्रदान की। उन्होंने प्रजाजनों द्वारा राज्य को एक रूप कर दिए जाने के लिए नियम विहित करने का प्रयत्न किया, परंतु उन्हें विभिन्न भागों में प्रचलित भिन्न भिन्न प्रथाओं को भी मान्यता देनी पड़ी। कालांतर में जब राजाओं की शक्तियों में वृद्धि हुई तो उन्हें आर्थिक क्षेत्र में बहुत से विशेषाधिकार प्राप्त हुए। अर्थशास्त्र के प्रणेताओं ने राजाओं की शक्तियों पर बल दिया। मौर्य काल तथा उसके बाद के काल में भारत में बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ और उनके अंतर्गत प्रशासन के अन्य पक्षों की भांति वित्तीय प्रशासन का भी बड़ा विकास हुआ। पूर्वोक्त साम्राज्यों के पतन के उपरांत भी प्रायः उनकी ही आर्थिक नीति के बाद के राजाओं ने अपनाया, परंतु दक्षिण भारत में प्रादेशिक शासकों ने भिन्न प्रकार के कर व मशहूल आदि लगाए। अल्तेकर के शब्दों में धर्म प्रधान होने के कारण वैदिक वाम्य से तत्कालीन राज्यों की आर्थिक व्यवस्था के विषय में अधिक ज्ञान नहीं प्राप्त होता। राज्यों के विकास की प्रारंभिक अवस्था में राजा की शक्ति अधिक न थी। राजा अपने अनुयायियों और कर्मचारियों का पोषण अपनी ही भूमि, चारागाहों और गोधन से प्राप्त होने वाली आय में किया करता था। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाई जाने वाली भेंट का नाम ही बलि था, जो राजा को स्वेच्छा से दिए जाने वाले करों या अन्य उपहारों के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। धीरे धीरे इस स्थिति में परिवर्तन हुआ। परवर्ती वैदिक वाण्ड में राज्याभिषेक के समय के एक मंत्र में राजा प्रजा को खाने वाला अर्थात विषमता कहा है। इस संबोधन से यही बोध होता है कि लोग राजा को नियमित रूप से कर दिया करते थे और इसी के बल पर राजा अपने कर्मचारियों सहित ठाठ बांटते रहता था। हॉपकिंस का मत है कि वैदिक काल में कर बहुत अधिक थे, ठीक नहीं है। उन्होंने विषमता का शब्द से धोखा खाया है। ब्राह्मण ग्रंथों में मत्ता शब्द का प्रयोग बहुधा भोक्ता के अर्थ में हुआ है, यथा एक स्थान पर पति अत्ता कोष्ठक में भोक्ता है और पत्नी को आद्य कोष्ठक में भोग कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि पति पत्नी को खाने वाला पीड़क था। शासन में वार्ता अर्थशास्त्र। शासन काल में शासक को सबसे पहले यह बतलाया जाता था कि देश का शासन और स्वतंत्रता अर्थनीति या वार्ता पर निर्भर करती है। किसी पशुपालन और वाणिज्य व्यवसाय सब मिलकर वार्ता शास्त्र हैं। कोष और दंड या सैनिक बल के द्वारा ही स्वयं अपने राज्य में तथा शत्रुओं के राज्य में सफलता होती है अथवा वे वश में किए जा सकते हैं। अर्थानर्थो वार्तायाम, अर्थात वार्ता में ही अर्थ भी है और उसके विपरीत अनर्थ भी है। अर्थशास्त्र। महाभारत में कहा गया है कि वार्ताया धार्यते सर्वम, अर्थात वार्ता ही सब राजनीतिक संगठन को धारण करती है। कामंद की नीति सार के अनुसार वार्ता वह लोक संस्था अर्थात वार्ता ही समाज का आश्रय है, इसलिए शासकों को वार्ता पर सबसे अधिक ध्यान देना पड़ता था। वार्ता शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार शासन करना उसका कर्तव्य होता था। वास्तव में यह उनका सबसे पहला कर्तव्य होता था और राजा से राज्याभिषेक के समय कहा जाता था, तुम्हें यह राज्य कृषि क्षेत्र संपन्नता और पालन के लिए दिया जाता है। कोष अथवा वित्त का महत्व। जिन जिन वस्तुओं को एक स्थान में संग्रह होता है वह उनका कोष कहलाता है, परंतु यहाँ कोष का अर्थ राजकोष, राज्य के खजाने से है। उसका संग्रह प्राचीन भारत में तीन मुख्य कार्यों के लिए होता था, नंबर एक सेना रखना, नंबर दो प्रजा संरक्षण, नंबर तीन यज्ञ। सुकृति में कहा गया है कि जो कोष स्त्री व पुत्र के निमित्त मात्र संग्रह किया जाता है वह केवल उपभोग का हेतु होता है। इस प्रकार का कोष राजा को नरक में ले जाता है और उसको परलोक में कोई सुख नहीं मिलता। कोष की देखरेख एक कर्मचारी के अधीन होती थी, वह कोषाध्यक्ष कहलाता था। राजकोष के निमित्त धन संग्रह करने के साधनों में भाग, दंड, आकर, उपायन, राजा की वर्षगांठ, पुत्रोत्पत्ति के समय, यज्ञ काल आदि अवसरों पर प्रजा से भेंट में प्राप्त धन और भाटक कोष्टक में भाड़ा मुख्य माने जाते थे। प्रजा के कृषि, गोपालन और वाणिज्य में तो राजा का भाग होता ही था, परंतु यदि राजा बिजीगिसु होता था तो अन्य राजाओं पर चढ़ाई करके उन्हें कर्द बना लेता था और इस प्रकार आय का एक और साधन मिल जाता था। राजा आजकल की भांति नगद रुपया नहीं लेता था, वरन धान्य का भाग धान्य में और पशुओं का पशुओं में। फिर भी पन्ने पर जो राजकर होता था वह अवश्य ही नगद मिला करता था। प्राचीन काल में कोष की बड़ी महिमा थी। नारद ने ठीक ही कहा है कि जैसा डाढ़ से रहित सर्प होता है, जैसा सींग टूटा बैल होता है, वैसा ही उस शत्रु को समझना चाहिए जिसके पास ना अर्थ होता है और ना सेवक। सोमदेव सूरी का कथन है कि राजाओं की जान कोष ही है, प्राण नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि कोष होने से राजा को सेना और सेवक सब कुछ सुलभ है, उसके अभाव में कोई पास तक नहीं खड़ा होता। अच्छा कोष कैसा होता है, इस विषय में बृहस्पति का कथन है कि विपत्ति आने पर जिससे बहुत व्यय किया जा सके और जो हिरण्य आदि संयुक्त हो वह गुणवान कोष समझा जाता है। इसी की विशद व्याख्या सोमदेव सूरी ने इस प्रकार की है, जिसमें सोना चांदी बहुत हो और चलने वाले सिक्कों की बहुत आयत हो और जो आपातकाल में व्यय करने में समर्थ हो वह कोष उत्तम होता है। इसलिए वशिष्ठ का कथन है कि सारी आय को व्यय नहीं करना चाहिए, कोष में कुछ अंश अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि आपातकाल में वही राज्य रक्षक होता है। प्राचीन भारतीय जानते थे कि सभी कार्यों के लिए धन आवश्यक है, अर्थ धर्म का निरंतर स्रोत है। आजकल की भांति प्राचीन भारत में भी राज्य की समृद्धि और उसका अस्थायित्व कोष पर निर्भर थे। इसी कारण प्राचीन भारतीय राजशास्त्रियों ने कोष को राज्य के सात अंगों में स्थान दिया। कौटिल्य ने कर वसूल करने वाले और कोष के अधिकारियों को बहुत महत्व दिया है। उसका मत था कि धन केवल धन महत्वपूर्ण है, क्योंकि दान व इच्छा पूर्ति दोनों ही अर्थ पर निर्भर है। राज्य के करों को वसूल करने और कोष से विभिन्न विभागों को व्यय के लिए आवश्यक धन देने का कर्तव्य उसने समाहर्ता नामक अधिकारी को सौंपा। कर संबंधी सिद्धांत प्राचीन भारत में कराधान के सिद्धांत। प्राचीन भारत में राजा स्वतंत्र नहीं था, वह दंड नीति अथवा धर्म के अधीन था। अतएव कर व्यवस्था भी दंड नीति शास्त्र व धर्म शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित नियमों के अधीन थी। महाभारत के अनुसार राजा को धर्म कर लेने तथा प्रजा के हितकर कार्यों पर व्यय करने का अधिकार है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हैं कि कर लेते हुए राजा को ध्यान रखना चाहिए कि अपने तथा राज्य के मूल का उच्छेद ना हो, अर्थात अधिक कर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जनता विरुद्ध हो जाती है। राज्य का क्षय ना चाहने वाले राजा को बछड़े के समान राष्ट्र का दोहन करना उचित है, अर्थात कर इस प्रकार लिया जाए कि प्रजा की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी रहे। एक दूसरे स्थान पर भी कहा गया है कि जैसे बछड़ा माता के स्तन को ना काट कर केवल दूध पीता है और जैसे मधुमक्खी या भौरा पुष्प से मधु का पान करते हैं, वैसे ही राजा राष्ट्र से कर ग्रहण करे। शुक्र ने धन संग्रह के संबंध में तीन सिद्धांत दिए हैं। पहला, कर मूलधन पर नहीं वरन लाभ पर लगाया जाए। दूसरा, राजा को कर उतनी मात्रा में लगाना चाहिए जिसके देने में प्रजा को लेस मात्र भी क्लेश ना होने पावे। राजा को अपनी प्रजा को इतना परिपुष्ट कर देना चाहिए कि प्रजा धन देने के लिए वैसे ही स्वयं उत्सुक बनी रहे जैसे दूध से भरे थाने वाली गाय अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए उत्कंठित रहती है। तीसरा, राजा प्रजा की रक्षा करने के अधिकार से ही कर ग्रहण करने का भागी होता है। राजकोष प्रजा की रक्षा और उसके कल्याण के लिए। मनु ने कहा है कि जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता वह शीघ्र नरक को जाता है। महाभारत के शांति पर्व में वर्णन है कि लोगों ने अपने प्रथम राजा मनु को अपनी रक्षा हेतु उनके पारिश्रमिक के रूप में प्रत्येक 50 गाय बेचने या मूल्य लेने पर एक गाय अनाज का 1/10 स्वर्ण का 1/50 भाग आदि देने का वचन दिया है। इसका यह आशय निकला कि राजा एक प्रकार से जनता का सेवक है जिसे कर आदि उसके प्रासंगिक तथा प्रजा की रक्षा के लिए मिलते हैं। हिंदू राजशास्त्र के अनुसार राजा को जो कर दिया जाता था वह उसकी शासन संबंधी सेवाओं का वेतन समझा जाता था। महाभारत में कहा गया है कि सप्तांश बलि कर अपराधियों से मिलने वाला जुर्माना और उनका अपहित धन आदि जो कुछ शास्त्रीय विधान के अनुसार प्राप्त हो वे सब तुम्हारे वेतन के रूप में होंगे और वही तुम्हारी आय के द्वार या राज कर होंगे। नारद ने भी व्यवस्था दी थी, राजाओं को निश्चित प्रथाओं के अनुसार जो कुछ धन प्राप्त हो और भूमि की आय का जो पश्चांश प्राप्त हो वह सब राज कर होगा, प्रजा की रक्षा करने के पुरस्कार स्वरूप राजा को मिलेगा। यह सिद्धांत उतना ही पुराना है जितना कि सौ कौटिल्य का अर्थशास्त्र। राजशास्त्र के आचार्यों ने इस सिद्धांत को विकसित करके ऐसा रूप दिया था जिसे हम राजकार का दैवी सिद्धांत कह सकते हैं। शुक्ल नीति सार में कहा गया है कि ब्रह्मा ने राजा को बनाया है, यद्यपि उसने राजा को स्वामी के रूप में बनाया परंतु वास्तव में वह प्रजा का पालन करने वाला सेवक ही है। प्रजा की निरंतर रक्षा और वृद्धि करने के बदले में राजा को राजकर के रूप में उसका अंश या वेतन मिलता है। कौटिल्य ने धान के 6ठे भाग और पन्न के 10वें भाग आदि को राजा का भागदेय बनाकर यह कहा है कि इसमें राजा प्रजा का योगक्षेम संपादित रहते हैं। जायसवाल ने हिंदू कर पद्धति के सिद्धांत के विषय में लिखा है, यह सिद्धांत संविधानिक दृष्टि से बड़े महत्व का है। करों को कानून द्वारा नियत किया गया था और करों की दरें धार्मिक नियमों में समाविष्ट की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप शासन का रूप कुछ भी रहा हो, कर लगाना शासक की मनचाही पर निर्भर नहीं था। साथ ही करों के प्रश्न पर जनता व राजा के बीच कोई संघर्ष नहीं उठता था। करों द्वारा संग्रहित धन मंत्रियों के नियंत्रण में रहता था और उन्हें ही कर वसूली की शक्ति प्राप्त थी। अर्थ विभाग मंत्रियों के अधीन होता था। वैदिक काल में भी कोषाध्यक्ष राजा के रत्नियों में से एक होता था। इतना ही नहीं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि करों को हिंदू राजनीति में प्रशासन हेतु राजा का परिसरमरिक समझा जाता था, इस सिद्धांत को राजशास्त्रियों ने कर विषयक दैवी सिद्धांत के रूप में विकसित किया था। शुक्र ने कहा है कि ईश्वर ने राजा को बनाया है, यद्यपि बाह्य रूप में वह स्वामी है किंतु वह जनता का सेवक है जो करो के रूप में प्रजा की रक्षा और विकास हेतु अपना परिश्रमिक पाता है। प्राचीन भारत में राजकर संबंधी अनेक सिद्धांत प्रचलित थे जिसमें हम कुछ सिद्धांतों का वर्णन नीचे करेंगे। नंबर 1, कर का धार्मिक सिद्धांत। प्राचीन भारत में राजा को धार्मिक सिद्धांतों से जकड़ दिया गया था। राज्य का लक्ष्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना था। राजा को कर लगाने का कोई अधिकार नहीं था, वह केवल वही कर वसूल करता था जो धर्म सम्मत होता था। महाभारत के शांति पर्व में वर्णन है कि राजा को कर ऐसा लगाना चाहिए कि राजा एवं करदाता दोनों सुखी रहे। जिस प्रकार दूध प्राप्त करने के लिए यदि धन काट लिया जाए तो दूध नहीं मिलता, उसी प्रकार प्रजा के समूल छेद से राजा को लाभ नहीं होता। अतः राज को निर्दिष्ट फलभोक्ता कहा गया है। कर का धार्मिक सिद्धांत राजा की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाना था। नंबर 2, कर का वैतनिक सिद्धांत। यह सिद्धांत कर के औचित्य का प्रतिपादन इस आधार पर करता है कि राजा द्वारा समाज की सेवा के बदले उसे कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए। अतः कर का वैतनिक सिद्धांत राज्य की सेवाओं का पुरस्कार है। यह सिद्धांत 300 ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत के शांति पर्व में दिखलाई पड़ता है। महाभारत में कहा गया है कि सष्टांश बलि कर अपराधियों से प्राप्त होने वाला अर्थदंड तथा अपहित धन आदि जो कुछ शास्त्रों के विधानों के अनुसार प्राप्त हो तुम्हारे वेतन स्वरूप होंगे और वही तुम्हारी आय के स्रोत या राजकर होंगे। सर्ण भाग भूतो राजा रक्षेत प्रजाम। शुक्राचार्य ने राजा को प्रजा का पालन करने वाला सेवक कहा है। प्रजा को रक्षा तथा वृद्धि करने के बदले में उसे राजकर के रूप में उसका वेतन मिलता है। नारद ने भी ठीक इसी से मिलती जुलती बात कही है। राजकर राजा द्वारा प्रजा की गई रक्षा का पुरस्कार होता है। उसे प्राप्त करके वह प्रजा का योगक्षेम संपादित करता है। अतः जब राजा को कर के रूप में वेतन मिलता है तो उसे राज को व्यवस्थित ढंग से चलाना चाहिए। उस काल में एक विचित्र व्यवस्था यह भी थी कि यदि राजा प्रजा की ठीक प्रकार से रक्षा नहीं कर पाता था तो उससे वेतन कोष्टक में कर वापस ले लिया जाता था। यह वापस लिया धन हानि के बराबर होता था। इस प्रकार प्रत्येक राजा प्राण प्रण से प्रजा की रक्षा करता था। यदि राजा प्रजा की रक्षा करने में असमर्थ रहता था तो प्रजा को पूर्ण अधिकार था कि वह किसी अन्य राजा का निर्वाचन करे। वास्तव में वेतन देने तथा वापस लेने का सिद्धांत यही था कि राजा अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव सजग रहे। नंबर 3, राजकर का दैवी सिद्धांत। भारतीय राजशास्त्र के आचार्यों ने वेतन के सिद्धांत को विकसित कर उसे दैवी सिद्धांत का रूप भी दिया है। शुक्र नीति के अनुसार ब्रह्मा ने राजा को बनाया, पर वास्तव में वह प्रजा पालन करने वाला सेवक ही है। प्रजा की निरंतर दशा और वृद्धि करने के बदले में राजा को राजकर के रूप में उसका अंश या वेतन मिलता है। इसे स्पष्ट करते हुए डॉक्टर जायसवाल ने यह उल्लेख किया है कि हम यही बात इस रूप में कह सकते हैं कि प्रजा से स्वामी सेवक से अधिक नहीं ले सकता था, क्योंकि उसे अधिक लेने का अधिकार ही नहीं था। वास्तव में इस सिद्धांत के अनुसार प्रजा स्वामी थी और राजा सेवक। इसलिए प्रजा ने कर के रूप में राजा के निर्वाह का वचन दिया था। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार हिंदू राज कर के सिद्धांत साधारणतः निम्न प्रकार है। नंबर 1, राज कर एकत्र करने में राजा को कभी लोभ या तृष्णा के वश होकर स्वयं अपने तथा दूसरे के मूल का उच्छेद नहीं करना चाहिए। नंबर 2, प्रजा पर इस प्रकार का कर लगाना चाहिए जिसमें आगे चलकर उसमें और बाहर भार वहन करने और आवश्यकता पड़ने पर अधिक भार वहन करने की शक्ति बनी रहे। जिस राज्य की प्रजा पर बहुत अधिक करों का भार होता है वह बड़े बड़े काम नहीं कर सकता। बड़े बड़े काम वही राज कर सकता है जिस पर कर का साधारण भार होता है और जिसका राजा अपने राज्य की रक्षा का ध्यान रखता हुआ किफायत से शासन की सब व्यवस्था करता है। प्रजा उस राजा का विरोध करती है जो शासन में बहुत अधिक व्यय करता है। सबसे अधिक जोर इस सिद्धांत पर दिया गया है कि राज्य कर ऐसा होना चाहिए जो प्रजा को भारी ना जान पड़े। राजा को अपना आचरण उस मधुमक्खी के समान रखना चाहिए जो बिच्छों को बिना कष्ट पहुंचाए उनसे मधु एकत्र करती है। नंबर 5, जब राज्य अधिक संपन्न होने लगे तब धीरे धीरे राज्य कर बढ़ाए जाने चाहिए। इसी प्रकार कर को संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत लिखित थे। नंबर 6, कर उपयुक्त स्थान उपयुक्त काल और उपयुक्त रूप में लगाए जाने चाहिए। उनके संग्रह का ढंग कष्टदायक नहीं होना चाहिए। नंबर 7, बिना इस बात का विचार किए कोई माल तैयार करने में कितना परिश्रम लगता है और कितना माल तैयार होता है कभी कर नहीं लगाना चाहिए। इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि बिना उपयुक्त लाभ से प्रेरित हुए कोई किसी उद्योग में नहीं लगता। शिल्प की वस्तुओं पर कर लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कितना लाभ होने पर कारीगर कोई चीज तैयार करने में लगा रहेगा जिससे राजा का भी लाभ होता रहेगा। उपयुक्त सिद्धांतों के साथ ही उन सिद्धांतों का उल्लेख कर देना भी आवश्यक है जिसके अनुसार राजकर की मात्रा निर्धारित होती है। राजकर के संबंध में स्मृतियों द्वारा निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। नंबर 1, सीमित और न्यायोचितता का सिद्धांत। ऊपर हमने इस बात का उल्लेख किया है कि राजा प्रजा की सेवा करता है और उसके बदले में राज कर के रूप में उसे वेतन दिया जाता है। महाभारत और अर्धशास्त्र आदि ग्रंथों में इस सिद्धांत की ओर संकेत किया गया है। शुक्र ने इसका उल्लेख करते हुए लिखा है स्वभाग भत्या दासत्वे प्रजानाम च निपह कृत ब्राह्मणा स्वामी रूप वस्तु पालनार्थ ही सर्वदा, अर्थात यद्यपि ऊपर से तो राजा स्वामी रूप है, पर वास्तव में वह प्रजा का पालन करने वाला सेवक ही है। प्रजा की रक्षा तथा वृद्धि करने के बदले में उसे राजकर के रूप में उसका वेतन मिलता है। राजा राजकर के रूप में एक निश्चित वेतन ही प्राप्त कर सकता है। स्मृतियों में इस बात का उल्लेख है कि कर ना तो अत्यधिक होने चाहिए और ना अति अल्प। अधिक कर लगाने से प्रजा रुष्ट हो जाती है। जिस प्रकार माली फूल तोड़ लेता है परंतु वृक्ष को किसी प्रकार हानि नहीं पहुंचाता, उसी प्रकार राजा को भी कर वसूलना चाहिए। उसे प्रजा से उसी तरह कर लेना चाहिए जिससे कि प्रजा की आर्थिक हितों को धक्का ना लगे और वह सुखी संपन्न रह सके। कर नियोजित और सीमित होना चाहिए। कर लेने और देने वाले दोनों ही लोग यह समझ ले कि उन्हें परिश्रम का ठीक लाभ मिल रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग में कर लाभांश पर लगाया जाना चाहिए। प्राचीन भारत में इसी सिद्धांत को मान्यता प्रदान करते हुए अधिकतर किसी की उपज का छठा भाग कर के रूप में लिया जाता था। नंबर 2, सुविधा का सिद्धांत। प्राचीन भारत में यह भी मान्यता थी कि राजा को प्रजा से कर लेते समय उसे अधिक सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। प्रजा को कभी यह अनुभव नहीं होना चाहिए कि उस पर अत्यधिक बोझ डाला जा रहा है। वह सदैव इस बात का अनुभव करती रहे कि जो कर वह दे रही है वह उसका धर्म है। यदि कर के निर्धारण में प्रजा की सुविधा का ध्यान ना रखा गया तो प्रजा कष्ट हो जाती है और प्रजा रुष्ट हो जाती है और इससे समाज की अर्थव्यवस्था पर धक्का लगता है। नंबर 3, लाभ पर आधारित कर सिद्धांत। कर निर्धारण में इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कर लाभ पर ही आधारित होना चाहिए। उद्योगों पर कर निर्धारण के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माल तैयार करने में कितना परिश्रम किया गया है और कितना माल तैयार हुआ है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कितना लाभ होने पर कारीगर वस्तु को तैयार करने में ही रहेगा। यदि किसी उद्योग में उद्योग को चलाने वाले को लाभ नहीं हो रहा है तो उस पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। वाणिज्य के संबंध में भी उसी व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। यह कर आमदनी पर ना लगाकर लाभ पर होना चाहिए। वाणिज्य की वस्तुओं पर कर लगाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि किसी चीज की बिक्री का दाम क्या है और खरीद का दाम क्या है, कितनी दूर से आई है और उसके आने में कितना व्यय पड़ा है, कुल लागत कितनी आई है और उसके हेतु व्यापारी को कितनी जोखिम उठानी पड़ी है। उपज पर कर का निर्धारण करते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उससे किसान को कितना लाभ हुआ। नंबर 4, वसूली की सुगमता का सिद्धांत। स्मृतियों में राजकर की वसूली की सुगमता का सिद्धांत भी उल्लेखनीय है। इन करों में यह स्पष्ट किया गया है कि उसी प्रकार के कर लगाए जाने चाहिए जिन्हें की सुगमता से वसूला जा सके। किसी भी वस्तु के ऊपर एक ही बार कर लगाया जाना चाहिए। बार बार कर की वसूली से प्रजा पीड़ित हो जाती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से करों को उचित ढंग से वसूला जा सकता है। नंबर 5, वस्तुओं की उपयोगिता का सिद्धांत। भारतीय मनुष्यों का विचार था कि वस्तुओं की उपयोगिता अनुसार ही उन पर कर लगाना जाना चाहिए। जो वस्तुएं राष्ट्रीय महत्व के लिए उपयोगी हैं, उन पर कर लगाना जाना चाहिए। जो वस्तुएं राष्ट्रीय महत्व के लिए उपयोगी हैं, उन्हें बाहर से मंगाने में कर मुक्त रखा जाना चाहिए। जो वस्तुएं अपने देश में बहुत कम मिलती हैं परंतु उसका उपयोग अधिक हो, वो भी बिना शुल्क लिए अपने देश में आनी चाहिए। शौकिया और विलासिता की वस्तुओं पर अधिक कर लगाना जाना चाहिए तथा राष्ट्र के लिए लाभकर वस्तुओं को कर से मुक्त रखा जाना चाहिए। नंबर 6, क्रमिक वृद्धि का सिद्धांत। प्राचीन भारतीय करों में राजकर के संबंध में क्रमिक वृद्धि के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया गया है। साधारण अवस्था में करों को बढ़ाना नहीं चाहिए, परंतु यदि कर की वृद्धि आवश्यक हो तो यह वृद्धि समय समय की जानी चाहिए। यदि करों को एकदम से बढ़ा दिया जाता है तो उससे प्रजा में विद्रोह की आशंका रहती है। कौटिल्य, शुक्राचार्य आदि ने कर के क्रमिक वृद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नंबर 7, संकटकालीन करों का सिद्धांत। संकटकालीन स्थिति में करों को अधिक किया जा सकता है। यदि राज्य पर किसी बाह्य शक्ति का आक्रमण हो रहा हो और राजकोष खाली होता जा रहा है तो राजा को इस बात का अधिकार है कि वह प्रजा से अधिक मात्रा में कर वसूले। कौटिल्य के अनुसार राजकीय आय के प्रमुख स्रोत प्राचीन भारत में राज्य की आय के स्रोत। प्रोफेसर आर्यस अग्रवाल के शब्दों में किसी भी देश की संपन्नता उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर होती है। राज्य यदि धन धान से परिपूर्ण है तो प्रजा उसकी उन्नति के लिए नए नए उपाय सोचती है। आर्थिक उन्नति के द्वारा ही देश तथा प्रजा दोनों सुख की सांस लेते हैं। अतएव जिस राज्य की प्रजा सुख तथा संतोष पूर्वक जीवन यापन करती है उस देश में श्री तथा समृद्धि स्वयमेव ही आते थे। प्राचीन काल में राजकोष की वृद्धि के लिए अनेक उपाय किए जाते थे। शुक्राचार्य ने लिखा है कि कोष ही मूल और बल है। इसी प्रकार आचार्य कौटिल्य ने भी कोष को सप्त प्रकृतियों में से एक बताया है। कौटिल्य के शब्दों में राजकोष ऐसा होना चाहिए जिसमें पूर्वजों की तथा उन अपनी धर्म की कमाई संचित हो। इस प्रकार कोष धान्य, स्वर्ण, रजत, नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्न तथा हिरण्य से भरा पूरा हो, जो दुर्भिक्ष तथा विपत्ति के समय प्रजा की रक्षा कर सके। इन गुणों से युक्त कोष संपन्न होता है। मनु तथा शुक्राचार्य ने भी कोष के संबंध में सप्तांगों का वर्णन किया है। वैदिक युग के पश्चात भी कोष की महत्ता का वर्णन मिलता है। वैदिक साहित्य में धार्मिक बातों का समावेश अधिक है। इस कारण तत्कालीन राज्यों के बारे में बहुत कम सामग्री प्राप्त हो सकी है। इस काल में राज्य शक्तिशाली ना होकर प्रजा अधिक शक्तिशाली होती थी। अतः प्रजा अपनी इच्छा अनुसार जो कुछ धन राज्य को देती थी वही कर के रूप में प्राप्त होता था। राजा के कर्मचारियों पर जो व्यय होता था उसकी पूर्ति राजा को भूमि, चरागाह तथा गोधन से प्राप्त होने वाली आय से करनी पड़ती थी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेंट देने की प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा को बलि कहा जाता था। वेदों में एक ऐसे अनेक श्लोक हैं जिनमें प्रार्थना की गई है कि इंद्र देवता राजा को बलि दिलवाने में सहायता दे और राजा को बलि के लिए प्रजा से काफी उपहार प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसी संदर्भ में वैदिक साहित्य में राजा को बलि हित कहा गया है। इस कथन से विदित होता है कि प्राचीन काल में कर नियमित रूप से नहीं लगाए जाते थे। प्राचीन भारत में राज्य की आय के स्रोत। प्राचीन भारत में मुख्य उत्पादक शक्ति किसान थे। अतः कर किसानों पर ही प्रधान रूप से लगाया जाता था। किसी कर ही मुख्य कर था, परंतु इसके साथ साथ अन्य प्रकार के कर भी लगाए जाते थे। इन करों का वर्णन यहाँ संक्षेप में करेंगे। नंबर 1, भूमि कर। भूमि कर प्राचीन राजस्व का प्रमुख स्रोत था। सामंतवाद के युग में जब मुख्य उत्पादन किसी पदार्थों का होता था तथा उद्योग आदि का विकास नहीं हो पाया था तो उस समय राजकीय कार्यों के लिए राजाओं द्वारा जनता पर कृषि कर लगाए जाते थे। भारत सदा से एक कृषि प्रधान देश रहा है। वहाँ की अधिकांश जनता अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रही है। अतः कृषि कर ही राज्य की आय का मुख्य साधन रहा है। प्राचीन भारतीय विचारकों के अनुसार कृषि कर से ही अधिकांश राज्य की कार्य संचालित किए जाते थे। कौटिल्य ने कृषि कर को एक विधा कहा है। उनके अनुसार वह विधा धान्य, हिरण्य, ताम्र और पशुओं व खनिज पदार्थों को प्रदान करने वाली होती है। किसी कार्य से धन उत्पन्न होता है, किसी का किसी की पैदावार में वृद्धि होने के साथ साथ ही राजकोष की आय में वृद्धि होती है और इससे राज्य सम्मानित तथा मजबूत होता है। प्राचीन भारतीय विचार किसी को इसलिए सबसे अधिक महत्व प्रदान करते थे, किसी के कर के विषय में कौटिल्य अर्थशास्त्र में विस्तार से लिखा है। किसी कर को प्राचीन ग्रंथों में अनेक नामों से अभिहित किया गया है। इसको उद्रक, भाग कर, सड़ भाग आदि अनेक नामों से पुकारा गया है। महाभारत में कहा गया है कि उस काल में उत्पादन का छठवां भाग राज कर के रूप में राजा को दिया जाता था, जिससे राजा प्रजा वर्ग की रक्षा तथा देश की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया करता था। इस प्रकार कृषि कर उपज के ऊपर निर्भर करता था। कहीं कहीं भूमि की उपज का चौथा, छठवां, बारहवां भाग भी कर के रूप में दिया जाता था। कर निर्धारण की परंपरा भूमि की उर्वरा शक्ति पर आधारित होती थी। अधिक उपज को देने वाली भूमि पर अधिक कर तथा कम उपज देने वाली भूमि पर साधारण कर लगाया जाता था। अनुपजाऊ भूमि पर कर भार मुक्त समझा जाता था। यदि कोई किसान अपनी भूमि की व्यवस्था अपने पास करता था तो उसे केवल एक बटा पांच भाग ही कर के रूप में अदा करना पड़ता था। यदि राजा सिंचाई, बीज, खाद आदि की व्यवस्था करवाता है तो उसे उपज का अधिक भाग प्राप्त होगा। शुक्राचार्य ने भूमि को निर्धारित करते हुए बतलाया है कि उपज का एक बटा चार, एक बटा तीन, एक बटा दो भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जा सकता है। उन्होंने ऊसर भूमि पर एक बटा छह भाग कर लगाने की बात कही है। मनुस्मृति में एक बटा छह, एक बटा आठ, एक बटा बारह भाग भूमि कर के रूप में वसूल करने की बात कही गई है। इस प्रकार उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमि कर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। भूमि कर मनमाने ढंग से नहीं लगाए जाते थे, बल्कि भूमि की उर्वरा शक्ति को ध्यान में रखकर लगाया जाता था। कम उपजाऊ भूमि पर मामूली कर और अधिक उपजाऊ भूमि पर गहरा कर लगाया जाता था। कुछ विद्वानों का यह विचार है कि भूमि कर इसलिए लगाया जाता था कि भूमि का स्वामित्व राजा के पास होता था, किसान के पास नहीं। किसान तो केवल जमीन जोतता था और अपनी मेहनत मजदूरी के रूप में एक निश्चित मात्रा में अनाज लेकर हट जाया करता था। राजा जब चाहे किसी किसान को भूमि से बेदखल कर किसी दूसरे किसान को भूमि जीतने के लिए दे सकता था, पर वास्तविकता यह है कि राजा भूमि का स्वामी ना होकर संरक्षक होता था। भूमि का मालिकाना हक केवल जोतने वाले किसान को ही प्राप्त था। उपज का निर्धारित अंश राजकोष को दिया करता था। डॉक्टर जायसवाल का यह कथन ठीक है कि अभी तक अनेकों इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं कि लोग भूमि का स्वतंत्रता से क्रय विक्रय करते थे। धर्म शास्त्रों में भी राजा को भूमि का स्वामी नहीं स्वीकार किया गया है। उस समय लोग स्वतंत्रता से धन का क्रय विक्रय करते थे। उस समय के प्राप्त होने वाले अनेकों शिलालेखों से यह बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती है कि भूमि पर राजा का कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता था। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में भूमि कर मुख्य कर के रूप में अवश्य प्रचलित था, पर भूमि का स्वामित्व किसानों के पास ही होता था। नंबर दो, खानों पर कर। किसी कर के अतिरिक्त प्राचीन भारत में राज्य की आय के स्रोतों में खानों से प्राप्त होने वाला कर भी प्रमुख था। ये खाने चांदी, सोने, हीरे तथा तांबे की प्रमुखता से पाई जाती थी। ठेकेदारों पर उत्पादन के आधार पर कर लगाया जाता था। राजा खानों से उत्पन्न होने वाले धातुओं पर कर लगा कर काफी धन प्राप्त करता था। खाने राज्य की क्षेत्रों में मानी जाती थी। ठेकेदार ठेके पर उत्पादन करते थे। महाभारत में खान के लिए अलग से एक मंत्री की नियुक्ति का वर्णन मिलता है, जो इस संबंध में मामलों की देखरेख करता था। वनों में हाथी दांत, लकड़ी, पत्थर, नमक, हीरा, सोना, चांदी आदि के उत्पादन पर मंत्री नजर रखता था। खाने राष्ट्रीय संपत्ति होती थी, अतः इनका निजी स्वामित्व नहीं होता था। जो ठेकेदार इनके खनन का काम करते थे उनको भारी कर चुकाना पड़ता था। यह कर सोने पर तथा हीरे पर 50%, चांदी तथा तांबे पर 53% तथा अन्य धातुओं पर 15 से लेकर 10% निर्धारित किया जाता था। इसके निर्धारण में अलग अलग रीति अपनाई जाती थी। इस प्रकार खानों से काफी राज्य की आय प्राप्त होती थी। नंबर 3, उद्योग पर व्यापार कर। प्राचीन भारत में व्यापारियों को माल बाहर भेजने व आयात करने पर काफी कर देना पड़ता था। एक बार जब कोई माल राज्य से बाहर ले जाया जाता था तो निर्यात शुल्क देना पड़ता था, और जब कोई माल बाहर से राज्य में आयात किया जाता था तो भी कर प्रदान करना पड़ता था। चुंगी कर के रूप में काफी आमदनी होती थी। जो व्यापारी बाहर से राज्य में व्यापार के लिए आते थे उनमें भी कर देना पड़ता था। यह कर वाणिज्य कर के रूप में नियत स्थानों पर वसूल किया जाता था। वस्तुओं के कीमतों के आधार पर चुंगी की दर में भिन्नता पाई जाती थी। कौटिल्य ने कुछ वस्तुओं की चुंगी दर के विषय में अवश्य लिखा है। उनके अनुसार मदिरा व रेशमी वस्त्र पर 5 से 10% तक, सूती वस्त्र पर 5 से 4% तक चुंगी वसूल की जाती थी। यज्ञों, विवाहों तथा धार्मिक कार्यों के लिए लाए जाने वाले पदार्थों को कर मुक्त रखा गया था। यही नहीं बल्कि उन पदार्थों के आयात को भी कर मुक्त रखा जाता था जिनकी आवश्यकता अधिक से अधिक व उत्पादन कम होता था। चुंगी कर के साथ साथ नौका कर का भी उल्लेख मिलता है। इसका कारण यह था कि प्राचीन काल के अधिकांश व्यापार नदियों द्वारा नौकाओं से ही होते थे, अतः नौका कर भी प्रमुखता से वसूल किया जाता था। नावों के अंतर्गमन तथा बहिर्गमन से आय प्राप्त होती थी। नंबर 4, विक्रय विक्रय कर। मनुस्मृति, कौटिल्य, अर्धशास्त्र, महाभारत तथा शुक नीति सार में हर कहीं क्रय विक्रय कर का समर्थन किया गया है। यह कर खरीदी जाने वाली तथा बेची जाने वाली समस्त वस्तुओं पर वसूल किया जाता था। विक्रय कर पर अपने मत को प्रकट करते हुए शुक्र नीति सार में कहा गया है कि क्रेता विक्रेता से राजा का जो भाग प्राप्त करता है उसे शुल्क कहते हैं। उस शुल्क को प्राप्त करने का स्थान है सीमा शुल्क। जो माल तैयार होता है उसे एक ही स्थान पर लगाना चाहिए। विक्रेता व क्रेताओं से 31वां या 16वां अंश मूल्य के आधार पर कर के रूप में लिया जाना चाहिए। मनुस्मृति में बिक्री कर के विषय में लिखा गया है कि पशु अथवा सोने का 1.5, धान्य का 1/8, मांस, घी, मधुमक्खी, सुगंधी, फूल व मिट्टी के बर्तन का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न पेशे में लगे हुए लोग भी कर मुक्त नहीं थे। बढ़ई, लोहार आदि को भी सप्ताह में 1 अथवा 2 दिन राजकीय सेवा में अर्पित करना पड़ता था। मदिरा पर 5% आबकारी कर के रूप में वसूल किया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रय विक्रय के रूप में भी राज्य की आय का निर्माण होता था। कौटिल्य ने इस कर का प्रमुखता से समर्थन किया है। नंबर 5, उत्पादन कर। ये कर मुख्यतः उत्पादित वस्तुओं पर लगाए जाते थे। उदाहरण के लिए उद्योग धंधों से उत्पादित माल, हाथी दांत की वस्तुएं, दस्तकारी, कालाकारी तथा कुटीर उद्योगों में निर्मित वस्तुओं पर उत्पादन स्थल पर ही उत्पादन शुल्क लगाया जाता था। नंबर 6, आयात निर्यात कर। कौटिल्य अर्थशास्त्र में इस कर का उल्लेख मिलता है। विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर 20% कर लगाया जाता था। यह कर राज्य की आयात निर्यात संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लगाया जाता था। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि विदेश व्यापार को नुकसान ना पहुंचे। लाभ के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता था। नंबर 7, प्रत्यक्ष कर। यह कर तौल, माप आदि उपकरणों पर लगाया जाता था। यह वसूलियों तथा कारीगरों पर भी लगाया जाता था। नंबर 8, न्यायालय का जुर्माना। राजकीय आय के साधनों में न्यायालयों द्वारा किए जाने वाले जुर्माने को भी सम्मिलित किया जाता था। ये जुर्माने फौजदारी तथा दीवानी न्यायालयों द्वारा लगाए जाते थे। नंबर 9, आपातकालीन कर। प्राचीन आचार्यों ने संकट काल में देश को बचाने के लिए अतिरिक्त कर की व्यवस्था की है। इस कर को आपातकालीन कर के नाम से पुकारा जाता है। विदेशी आक्रमण, अकाल, सूखा, महामारी, बाढ़ तथा अनेक दैवीय अथवा मानवीय विपताओं में देश को बचाने के लिए संकटकालीन कर की व्यवस्था की गई है। इस कर के लिए महाभारत में प्रार्थना शब्द का उल्लेख मिलता है। इसका आशय यह है कि आपातकाल के समय राजा जनता से अतिरिक्त कर देने की प्रार्थना करता था और इस प्रकार राजा की याचना को सुनकर प्रजा संकटकालीन कर देने के लिए तैयार हो जाती थी। कौटिल्य ने इस कर को काफी महत्वपूर्ण माना है। निष्कर्ष: प्राचीन भारतीय राजकीय आय के मूल स्रोतों के अध्ययन से पता चलता है कि विविध स्थानों से कर वसूल करके राजकोष को मजबूत बनाने की परंपरा प्रचलित थी। कौटिल्य के अनुसार धन धान से भरा पूरा राज्य ही शक्तिशाली होकर सम्मानित हो सकता है। प्राचीन भारत के विभिन्न युगों में राजस्व व्यवस्था। यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि प्राचीन भारत में विभिन्न युगों में राजस्व की व्यवस्था के संबंध में क्या जानकारी उपलब्ध होती है। नंबर एक, ऋग्वैदिक काल में राजस्व। ऋग्वैदिक काल में राजा को युद्ध शासन व्यवस्था एवं व्यक्तिगत करों के हेतु धन की आवश्यकता होती थी और इस हेतु वह जनता से कर लेता था, जिसे कि बलि के नाम से पुकारा जाता था। ऋग्वैदिक काल में बलि का प्रयोग देवताओं को उपहार और राजा को कर देने हेतु तथा देने के हेतु हुआ है। जहां उसका संबंध राजस्व से है, वहां बलि हित शब्द प्रयुक्त किया गया है। वस्तु के रूप में लिया जाता था, बलि स्वेच्छा से लिया जाता था अथवा उसे जबरदस्ती वसूला जाता था। इस संबंध में निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त नहीं होती। हारे हुए जनसमूह के विजेता को कर देना होता था। नंबर दो, उत्तर वैदिक काल में राजस्व। उत्तर वैदिक काल तक आर्य निश्चित स्थानों पर अपना राज्य स्थापित कर चुके थे और शासन व्यवस्था अपेक्षाकृत जटिल हो गई थी। उस समय तक जनता के लिए राजा को बलि देना आवश्यक था। ब्राह्मणों को बलि से मुक्त रखा गया था। बलि का अधिकतर भार वैश्यों एवं शूद्रों पर ही पड़ता था। वैश्य किसी पशु पालन एवं व्यवसाय करते थे और शूद्र अनेक शिल्प व्यवसायों को अपनाए हुए थे। राजा उन लोगों से अनाज एवं अन्य वस्तुएं कर के रूप में वसूलता था। राजसीय समारोह के वर्णन में अनेक अधिकारियों का उल्लेख किया गया है कि जिनमें से एक अधिकारी का नाम भाग दूध था। इस अधिकारी का कार्य बलि वसूल करना था। चूंकि इस अधिकारी की नियुक्ति राजा द्वारा होती थी, इससे यह स्पष्ट है कि उस समय तक राजस्व विभाग का संगठन प्रारंभ हो चुका था। नंबर तीन, सूत्र काल में राजस्व। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में व्यवसाय और व्यापार की विशेष उन्नति हुई और फलस्वरूप कर प्रणाली भी विकसित हुई। धर्मशास्त्रों से हमें सूत्र काल की कर प्रणाली की विशेष जानकारी प्राप्त होती है। उनमें उन वस्तुओं की विस्तृत सूची दी गई है जिन पर कर लगाया जाता था। बौधायन और वशिष्ठ का मत है कि राजा जनता की आय के छठा भाग का अधिकारी है। गौतम ने कृषि की उपज के छठे, आठवें और दसवें भाग को कर के रूप में लिए जाने का उल्लेख किया है। अच्छी भूमि का छठा भाग, मध्य श्रेणी की भूमि का उपज का आठवां भाग और निम्न श्रेणी की भूमि का उपज का दसवां भाग कर के रूप में लिया जाता था। अन्य करों में पशु और स्वर्ण पर 1/5, व्यापारिक माल पर 1/20 तथा फल और फूल, जड़ी बूटी, हाथी मांस, घास और जलाने की लकड़ी का 7वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। शिल्पी, शारीरिक श्रम करने वाले लोग माह में 1 दिन राज्य के लिए कार्य करते थे। जहाजों और गाड़ियों के मालिकों पर ऐसे ही प्रतिबंध लगे थे। आयात की वस्तुओं का 10वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। विद्वानों, पुरोहितों, कुंवारी लड़कियों, विधवाओं, शिक्षकों, सन्यासियों, वृद्धों, अंधों, बहरों, गूंगों और अपाहिजों को कर से मुक्त रखा गया था। नंबर चार, मौर्य काल में राजस्व। मौर्य काल में राजस्व के संबंध में कौटिल्य के धर्मशास्त्र से विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य ने कोष पर विशेष महत्व दिया है। उसका विचार है कि राज्य की सुदृढ़ता कोष पर ही निर्भर करती है। अपने अर्थशास्त्र में उसने अनेक साधनों का उल्लेख किया है जिनके द्वारा राज्य की आय होती थी। कौटिल्य ने लिखा है कि करों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि जनता को असुविधा ना हो। जिस तरह माली पके हुए फल को उद्यान से तोड़ लेता है, उसी प्रकार राजा को भी राजस्व पके हुए फल की तरह तोड़ लेना चाहिए। जिस प्रकार गाय को दुलार करके उसका दूध दुहा लिया जाता है, उसी प्रकार राजा को भी प्रजा का दुलार कर उससे कर उगाहना चाहिए। यदि राजकर से जनता में असंतोष उत्पन्न होगा तो यह विद्रोह कर देगी। कौटिल्य ने आय के दो मुख्य साधनों का उल्लेख किया है, नंबर आ शरीर और नंबर बा आय मुख। नंबर आ आय शरीर और नंबर बा आय मुख। आय शरीर के अंतर्गत आय के निम्नलिखित साधन होते हैं, नंबर एक दुर्ग, नंबर दो रुष्ट, नंबर तीन खनि, नंबर चार सेतु, नंबर पांच बीज और नंबर सात त्रणीक पथ। नंबर एक दुर्ग। विभिन्न नगरों से होने वाली आय को दुर्ग के नाम से पुकारा जाता था। इस प्रकार की आय निम्नलिखित साधनों से होती थी, नंबर अ शुल्क चुंगी, नंबर बा दंड अर्थदंड, नंबर सात पौतव तौल माप के साधनों को प्रमाणित करने से प्राप्त धन, नंबर दा मुद्रा पद्धति से होने वाली आय, नंबर का सुरा शराब के ठेकों से होने वाली आय, खा मुद्रा नगर प्रवेश के लिए दिए जाने वाले अनुमति पत्र से प्राप्त होने वाली आय, गा नागरिक कारागारों से होने वाली आय, घा सूता कसाई घरों से प्राप्त आय, चा सूत्र राज्य द्वारा अनाथ अपंग रोगी विकलांग जैसे व्यक्तियों से कराए गए कार्यों और सेवाओं से होने वाली आय, छा तेल तेल के व्यवसायियों से होने वाली आय, जा नमक नमक उत्पादन करने वाले से होने वाली आय, झा घित घी के व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय, टा सवर्णिक सुनारों से प्राप्त आय, ठा पड़य संख्या राज की पड़य के विक्रय से होने वाली आय, अंगा वैश्या नर्तिका तथा रूप जीवा वैश्याओं से प्राप्त आय, नंबर ढा धूत जीव से होने वाली आय, खा करीगारी करीगारों तथा शिल्पियों से होने वाली आय, ता वास्तुक अचल संपत्ति से तथा उसके स्वत्ता स्वत्वाधिकार हस्तांतरण के समय लिया गया राजकीय कर, थ्रा देवताध्यक्ष धर्मघरों एवं मंदिरों से होने वाली आय, दा द्वार नगर के प्रधान द्वारों पर आने और जाने वाले मालों पर दिया गया कर, और घा बाहिर का देव समृद्धिशाली एवं धनिकों से लिया जाने वाला अतिरिक्त कर। नंबर दो राष्ट्र। जनपद में होने वाली आय को राष्ट्र के नाम से पुकारा जाता था। यह आय निम्नलिखित साधनों से होती थी, नंबर का सीता राजकीय कृषि क्षेत्रों में प्राप्त उपज करों को सीता कहा है। इसके लिए कौटिल्य ने एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की है। इस पदाधिकारी को सीता अध्यक्ष के नाम से संबोधित किया गया है। सीता अध्यक्ष के अधीन जो कृषि कार्य सम्पन्न होता था उससे होने वाली आय को राजकोष में संचित किया जाता था। खा भाग राजकीय कृषि क्षेत्रों के अलावा अन्य भूमिकों से प्राप्त कर भाग कहलाता है। इसकी दर भूमि के अनुसार निश्चित की जाती थी। गा बलि यह एक प्रकार का धार्मिक कर था, लेकिन मानव धर्मशास्त्र के अनुसार प्रजा की रक्षा के लिए राजा द्वारा जो व्यवस्था की जाती है और उसके निमित्त प्रजा द्वारा जो धन धान्य तथा अन्य सामग्री दी जाती थी उसे बलि के नाम से संबोधित किया गया है। नंबर घा कर सामंतों द्वारा किया गया भाग कर कहलाता है। प्रत्येक सामंत को अपने स्वामी राजा को वार्षिक कर देना पड़ता था। नंबर अंगावड़ी कर कर विक्रय वाली वस्तुओं के आधार पर जो कर लगाया जाता था उसे वाणिक कर कहा गया है। इस कर में वे सभी कर सम्मिलित थे जिनका वाणिकों को राजा का भुगतान होना था। नंबर चार नदी पाल नदी पुल घाट पार करने के साधनों के प्रयोग के लिए लिया जाने वाला नदी पाल कहलाता था। इन साधनों की व्यवस्था राज्य की ओर से होती थी। नंबर छह तर नाव डोंगियों के द्वारा नदी नालों को पार करने के लिए जो ढुलाई दी जाती थी वह तर कहलाती थी। जा विवितम गोचारण भूमि से प्राप्त कर विवितम कहलाता था। जा नौकाध्यक्ष द्वारा एकत्र किया जाने वाला राज्य भाग नौका अध्यक्ष नदियों झीलों आदि से नौका आदि की व्यवस्था करते थे। उसके द्वारा इन नौकाओं के प्रयोग किए जाने के कारण वसूल किया गया धन भी कोष का एक भाग होता था। टा रज्जू, रज्जू के द्वारा भूमि की बाँप जोख करने हेतु प्राप्त शुल्क रज्जू कहलाता है। था रज्जू चोर, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। नंबर तीन, खनी। मौर्य युग में खानों के ऊपर राज्य का अधिकार होता था। खाने दो प्रकार की होती थी, नंबर एक स्थलीय और नंबर दो समुद्रिक। सोना चांदी मणि मुक्ता हीरे शंख लोहा ताबा और विभिन्न प्रकार के पत्थरों की खानों को राज्य की काफी आय होती थी। नंबर चार, सेतु। फलों के बगीचे, फल साग सब्जी आदि से जो आय होती थी उसे सेतु के नाम से पुकारा जाता था। नंबर पाँच, वनों। नंबर पाँच, वन। वनों पर राज्य का स्वामित्व था। वनों से राज्य को अत्यधिक मात्रा में आय प्राप्त होती थी। वन उपज, लकड़ी, औषधियां, घास, जंगली जानवरों आदि वनों की आय के मुख्य साधन थे। नंबर छह, ब्रज। मौर्य युग में राज्य की अपनी पशुशालाएं थी। गाय, घोड़े, बैल, बकरी आदि विशाल चारागाहों से होने वाली राज्य की आय को ब्रज के नाम से पुकारा जाता था। नंबर सात, वणिक पथ। स्थल पथ और जल पथ से होने वाले व्यापार से जो आय होती थी उसे वणिक पथ के नाम से पुकारा जाता था। अभिमुख। कौटिल्य ने कोष को बढ़ाने के लिए अन्य साधन भी बताया है जिनको उसने आय मुख के नाम से पुकारा है। आय मुख के अंतर्गत निम्नलिखित साधन सम्मिलित हैं। नंबर एक, मूल। राज्य द्वारा चलाए गए उद्योगों के उत्पादनों की बिक्री से प्राप्त धनराशि को कौटिल्य ने मूल कहा है। नंबर दो, भाग। व्यापारियों द्वारा प्राप्त राजकोष के लिए निर्धारित अंश भाग कहलाता था। नवड़ का छठा भाग के निमित्त राजकोष में संचित किया जाता था। नंबर तीन, ब्याजी। राजकोष के लिए जो वस्तुएं व्यापारियों से ली जाती थी उनका गणना एवं नाप तौल में तथा सामान्य गणना एवं नाप तौल के में कुछ अंतर होता था। कोष हेतु जो वस्तुएं इस प्रकार संचित की जाती थी उनकी गणना तथा नाप तौल में 5% अधिक रहता था। इस प्रकार का अधिक लिया गया भाग ब्याजी कहलाता था। नंबर चार, परिधि। यह एक प्रकार का विशेष कर था। नंबर पाँच, क्लुप्त। नदी तट समुद्र तथा झीलों के किनारे बसे हुए ग्रामवासियों को इस प्रकार का भुगतान करना पड़ता था। नंबर छह, रुपीक। इसका संबंध प्रथा द्वारा राजकोष में संचय की जाने वाली धन राशि से था। इसके हेतु प्रजा को कुछ शुल्क देना पड़ता था। नंबर सात, आयर। यह एक प्रकार का अर्थदंड था। दंड उन व्यक्तियों को दिया जाता था जो राज्य द्वारा निर्धारित बिक्री स्थानों के अलावा अन्य किसी स्थानों पर बिक्री के लिए लाई गई वस्तु का क्रय करते थे। मौर्य काल में उपयुक्त प्रकार से जो आय होती थी उसके अतिरिक्त आय के और भी साधन थे। न्यायालयों से शुल्क मिलता था। आवश्यकता पड़ने पर युद्ध और अकाल आदि के समय अन्य कर भी लगाए जाते थे। संकट के समय धनी वर्ग से अधिक कर लिया जाता था और उनके द्वारा संचित आय का वमन किया जाता था। श्रीमंतों को उपाधियां सम्मान देकर भी उनसे धन लिया जाता था। धनवान व्यक्तियों से यह अनुरोध किया जाता था कि वे अपने स्वर्ण का अधिक से अधिक अंश राज्य को दें। जो स्वेच्छा से राज्य की भलाई करते थे उन्हें राज्य सभा में उच्च पद, छत्र, पगड़ी आदि दी जाती थी। राजस्व विभाग का संचालन समाहर्ता नामक अधिकारी करता था और उसका अधीनता में कई अध्यक्ष रहते थे, जैसे शुल्काध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, सीताध्यक्ष, सुराध्यक्ष, सुनाध्यक्ष, बचूड़खाना का अध्यक्ष, गणिका अध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष, खान के निरीक्षक, पन्याध्यक्ष, दुकान के निरीक्षक आदि। जिला के राजस्व अधिकारी को युक्त के नाम से पुकारा जाता था। नंबर पाँच, स्मृति काल में राजस्व। स्मृति काल में काफी हद तक कौटिल्य की दर व्यवस्था को ही मान्यता प्रदान की गई है। मनु ने लिखा है कि जो राजा कर वसूल करता और जनता की रक्षा नहीं करता उसे नरक की प्राप्ति होती है। इससे स्पष्ट है कि मनु की यह मान्यता है कि राजा को कर इसलिए मिलता है कि वह जनता की रक्षा करे। उसके अनुसार कर व्यवस्था इस प्रकार निर्धारित की चाहिए की जानी चाहिए। मनु ने यह स्पष्ट किया है कि राजा को अच्छी भूमि के उत्पादन का चौथा, मध्यम श्रेणी की भूमि के उत्पादन का छठा, खराब भूमि के उत्पादन का आठवां भाग कर के रूप में लेना चाहिए। सोना और पशुओं पर 50वां भाग एवं वृक्ष, फल, फूल, जड़ी बूटी, सुगंधित वस्तुएं, भ्रण भांड आदि पर छठा भाग कर के रूप में प्राप्त करना चाहिए। बिक्री की जाने वाली वस्तुओं पर 20वां भाग कर के रूप में लिया जाए। स्मृति काल में चुंगी कर एवं यात्रा कर भी प्रचलित थे। शिल्पकारों और शूद्रों को मास में एक दिन राजा का कार्य करना पड़ता था। यदि किसी व्यक्ति को जमीन में गड़ा हुआ धन प्राप्त होता था तो उसे उसका कुछ भाग उसे राजा को देना होता था। खानों से भी राजा की आय होती थी। नंबर 6, गुप्त काल में राजस्व। गुप्त काल में विशाल साहित्य का सृजन हुआ है, साथ ही उस युग के अनेक अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। परंतु इस साहित्य और अभिलेखों में उस युग की राजस्व व्यवस्था का अधिक उल्लेख नहीं हुआ है। उस युग में 18 प्रकार के करों का उल्लेख प्राप्त होता है, परंतु उनका नाम कहीं भी नहीं मिलता। उन करों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमि कर था। कुछ स्थानों पर उसे भाग कर के नाम से भी पुकारा जाता था, कुछ में इसे उद्रंग कहा जाता था। भूमि की दशा के अनुसार 16 से 26 प्रतिशत तक कर लिया जाता था। यह वस्तु के रूप में वसूला जाता था। राज की आय का अन्य महत्वपूर्ण साधन चुंगी कर था, जिसे अभिलेखों में भोग कर लिखा गया है। राज्य में बनने वाली वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क भी लिया जाता था। उसका नाम भूत प्रत्याय था। अभिलेखों में इसका उल्लेख किया गया है। राजा की भूमि, चुंगी घर एवं चारागाह आदि से भी राज्य की आय होती थी। नंबर 7, हर्ष काल में राजस्व। हर्ष काल के राजस्व के संबंध में साहित्यिक ग्रंथों, अभिलेखों और हेनसांग के विवरण से पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। इनमें हेनसांग का विवरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हर्ष के समय में राज्य की आय के निम्नलिखित प्रमुख साधन थे। नंबर 1, उद्रंग। भूमि कर को उद्रंग के नाम से भी पुकारा जाता था। भूमि की उपज का छठा भाग कर के रूप में लिया जाता था। नंबर 2, ऊपरी कर। यह कर उन किसानों से वसूला जाता था जिनका भूमि पर स्वामित्व नहीं होता था। नंबर 3, धान्य। विशेष प्रकार का यह शुल्क विशेष अनाजों के ऊपर लिया जाता था। नंबर 4, हिरण्य। खनिज पदार्थों पर लिए जाने वाले शुल्क को हिरण्य के नाम से पुकारा जाता था। नंबर 5, न्यायालय शुल्क। न्यायालयों के शुल्क से भी राज्य की आय होती थी। नंबर 6, अर्थदंड। अपराधियों से दंड के रूप में भी काफी रकम वसूल की जाती थी। नंबर 7, शारीरिक श्रम। जो व्यक्ति राज्य की कर नहीं दे पाते थे, उन्हें कर के बदले में शारीरिक श्रम करना होता था। हर्ष काल में कर संबंधी नीति अत्यंत उदार थी और जनता पर बहुत हल्के कर लगाए गए थे। राज्य की सबसे अधिक आय भूमि से होती थी। भूमि की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। उसका पर्यवेक्षण और माप आदि की उचित व्यवस्था थी। खेतों की सीमा निर्धारित थी। पर्यवेक्षण विभाग के प्रमुख अधिकारियों को प्रभाता कहा जाता था। इसके अतिरिक्त सीमा प्रदाता, न्यायकरणिक आदि अधिकारी भी होते थे। नंबर 8, पूर्व मध्य युग में राजस्व। साहित्यिक ग्रंथों और अभिलेखों के द्वारा पूर्व मध्ययुग की राजस्व व्यवस्था के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। उस समय प्रतिहार, परमार, चौहान, गहड़वाल, राष्ट्रकूट एवं चालुक्य के अलग अलग क्षेत्रों में राज करते थे। इन वंशों के राजाओं ने अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नवीन करों का प्रारंभ किया। कुछ पुराने कर भी चले आ रहे थे, परंतु स्थान स्थान पर उनका स्वरूप बदल गया था। पूर्व मध्य युग में अभिलेखों में अधिकतर भाग हिरण्य, उपरी कर, भाग भोग कर आदि का उल्लेख है। घोषाल महोदय ने भाग भोग कर का एक ही शब्द माना है। इसका अर्थ राजा की भूमि के उपज में भाग बतलाया है। डॉक्टर त्रिपाठी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कौनौज का इतिहास में में भाग भोगकर को अलग अलग मानते हैं। डॉक्टर अलतेकर ने अपनी पुस्तक राष्ट्रकूट एवं उनका युग में इसका अर्थ भाग कर और भोग कर लगाया है। इस युग में विभिन्न स्थानों पर जो कर लगे थे उनका उल्लेख यहाँ संक्षेप में किया जा रहा है। नंबर एक, भाग। यह किसी कर था जो उपज का 1/6 भाग होता था। नंबर दो, भोग। समय समय पर गांव के लोग राजा को फल फूल लकड़ी आदि वस्तुएं देते थे जिन्हें भोग के नाम से पुकारा जाता था। नंबर तीन, कर। इसका संबंध भोग के ऊपर विशेष कर से था जो ग्राम के लोग राजा को देते थे। नंबर चार, हिरण्य। घोषाल महोदय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कंट्रीब्यूशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द रिवेन्यू सिस्टम में लिखा है कि अनाज के स्थान पर नगद वसूली के लिए हिरण्य का प्रयोग किया जाता था। नंबर पाँच, उद्रंग और ऊपरी कर। घोषाल महोदय का विचार है कि उद्रंग वह कर था जो अस्थायी कृषकों से लिया जाता था और ऊपरी कर वह उन कृषकों से लिया जाता था जिन्हें भूमि अस्थायी रूप से दी जाती थी। उद्रंग एक नियत कर था और ऊपरी कर अतिरिक्त कर। शुल्क भी राजकीय आय का बड़ा साधन था। वास्तव में यह व्यापार पर था। जो माल स्थल मार्ग से आता था उस पर जो शुल्क लिया जाता था उसे मंडपिकाय कहा जाता था और जल मार्ग से आने वाले माल पर जो शुल्क लिया जाता था उसे घटदाय कहा जाता था। नंबर सात, उत्पादन शुल्क। वस्तुओं के उत्पादन पर भी शुल्क लिया जाता था। नंबर आठ, मार्गदाय। सड़कों पर आने जाने वाले व्यक्तियों से जो कर लिया जाता था उन्हें मार्गदाय कहा जाता था। नंबर सात, प्रवणी कर। व्यापारियों से एक विशेष प्रकार का कर उगाहा जाता था जिसे प्रवणी कर कहा जाता था। नंबर दस, तुरुष्क दंड। गोसाल महोदय के अनुसार तुर्क आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए जो कर वसूला जाता था उसे तुरुष्क दंड कहा जाता था। एक अन्य मत यह है कि यह कर तुरुष्क निवासियों से लिया जाता था। नंबर एक, कुमारी गदी आड़क। नियोगी महोदय ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द गढ़वाल डायनेस्टी में लिखा है कि इस प्रकार का कर पहाड़ी और जंगली इलाकों में जो कुमारी की खेती होती थी उस पर लगान के रूप में लिया जाता था। लल्लन जी गोपाल ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया में उसका संबंध उस नाजराने से स्थापित किया है जो राजघराने के लोगों को दिया जाता था। नंबर 12, जल कर। नियोगी महोदय का यह मत है कि यह कर जल की उत्पादित वस्तुओं पर लगता था परंतु कुछ विद्वान उसे सिंचाई कर भी बतलाते हैं। नंबर 13, कूटक। नियोगी महोदय का विचार है कि यह मकानों पर कर था परंतु लल्लन जी गोपाल के अनुसार यह खेती के हल पर कर था। नंबर 14, गोकर। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि गायों की बिक्री पर लगने वाले कर को गोकर कहते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी उसे चारागाह कर मानते हैं। वास्तव में यह एक पशु कर के रूप में था। नंबर 15, बलिदी। कुछ विद्वान उसे बैलों के प्रजनन पर कर मानते हैं परंतु इसे पशु कर रूप में देते हैं। नंबर 16, पढ़ कर। घास लकड़ी पर जो कर लगता था उसे पढ़ कर कहते थे। नंबर 17, लवण कर। निजी रूप से अपना नमक बनाने वालों पर लवण कर लगता था। नंबर 18, तारादाय और सनोका भाटक। यह नाव पर ले जाने हेतु किराए के रूप में वसूला जाता था। नंबर 19, यमलिका कवली। गाने वाले चारणों पर जो कर लगाया जाता था उसे यमलिका कवली के नाम से पुकारा जाता था। 20, आकर। खानों पर लगने वाले कर को आकर के नाम से पुकारा जाता था। 21, निधि निक्षेप। यह ट्रस्ट की संपत्ति पर लगाने वाला कर था। नंबर 22, बाह्यंतर सिद्धि। गड़े हुए धन में से राज्य को मिलने वाले हिस्सों में से उनका संबंध स्थापित किया गया है। नंबर 3, चोर द्वारा। बंगाल के पालों ने चोरों से रक्षा के लिए ग्रामवासियों पर इस प्रकार का कर लगाया था। इनके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर भिन्न प्रकार के कर भी लगाए जाते थे। कलचूरियों के अभिलेखों में पट्टुक किलादाय दिष्ट साध्यादाय अर्धपुरुषाधिकादाय विषयिकादाय आदि करों का वर्णन किया गया है। सभी अवसरों पर जो कर लगाए जाते थे उसे कल्याणबद्ध कल्याणा बंध कहते थे। चौहानों के अभिलेखों में तुलारो मान्य सेलहतभाव्य और बलाधिपाभाव्य आदि करों का उल्लेख हुआ है। खल भिक्षा का भी उल्लेख मिलता है, जिसका तात्पर्य उस वसूली से था जो किसान के उस समय लिया जाता था जब वह अपना अनाज भूसी के लिए राजा के पास लाता था। गुजरात के चालुक्यों के अभिलेखों से दान विभाग नव निधान और अभिनव मार्गस्क आदि नवीन करों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। घोषाल के अनुसार दानी भाग का तात्पर्य ग्राम वासियों द्वारा समय समय पर राज को फल और लकड़ी देने से है। दशरथ शर्मा के अनुसार नव निधान का अर्थ पृथ्वी में गिरे हुए धान से है। विभिन्न करों के अतिरिक्त राजकीय आय के अन्य साधन भी थे। राजा को युद्ध में लूट का माल भी प्राप्त होता था, साथ ही वह सामंतों से भी कर वसूल करता था। यदि कोई बिना उत्तराधिकारी के मर जाता था तो राजा उसका धन हड़प लेता था। राजा को जंगल खानों नमक आदि से भी काफी आमदनी होती थी। कर से मुक्ति। अर्थशास्त्र और सुकृति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बेकार भूमि को कृषि के योग्य बनाए तो उससे केवल नाम मात्र का कर लिया जाना चाहिए। ऐसे गांवों को कर से मुक्त किया जाना चाहिए जहां से राजकीय सेना को पर्याप्त संख्या में सैनिक प्राप्त होते हों। इसी प्रकार गूंगे बहरे अंधे तथा अपाहिज व्यक्तियों से भी किसी प्रकार का कोई कर नहीं लिया जाता था। निर्धन विधवाएं तथा अनाथ स्त्रियों को भी छूट दी जाती थी। स्मृतियों में विद्वान ब्राह्मणों को भी कर से मुक्त करने की सिफारिश दी गई है। इस प्रकार के ब्राह्मणों को कभी कभी अग्रहर ग्राम राज्य की ओर से प्रदान किए जाते थे। इसके अतिरिक्त कुछ स्मृतियों ने पूरे ब्राह्मण वर्ग को कर से मुक्त रखने की संस्तुति की, किंतु इस बारे में शास्त्रकारों के बीच मतभेद है। महाभारत के अनुसार पशुपालन कृषि तथा वाणिज्य के काम करने वाले ब्राह्मणों में से पूरा पूरा कर वसूल किया जाए। इसके विपरीत अनेक ऐसे राजाओं के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने पूरे ब्राह्मण वर्ग को कर से मुक्त कर दिया था। परमार वंश के राजा सोम सिंह देव तथा विजयनगर के राजा अच्युत राय द्वारा ब्राह्मणों को कर से मुक्त करने का उल्लेख किया गया है, किंतु सामान्य रूप से ब्राह्मणों को कर देना पड़ता था। जिन देवालयों के पास विस्तृत भूमि होती थी उनसे भी राजकर की वसूली की जाती थी। राजकर को चुकाने के लिए मंदिरों द्वारा अपनी भूमि के कुछ अंश बेचने के उदाहरण भी मिलते हैं। निष्कर्ष। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में कर के लिए करदाता के सामर्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अधिक कर से प्रजा में असंतोष उत्पन्न होता था, अतः इस पर विशेष ध्यान दिया जाता था। प्राचीन भारत में राजस्व व्यय। एक विद्वान के अनुसार प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इस बात का बहुत कम उल्लेख मिलता है कि राज्य को जो आय होती थी उसको किस प्रकार से खर्च होता था। कुछ साहित्यिक ग्रंथों में इस संबंध आवश्यक उल्लेख किया गया है, जिनके आधार पर हम यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि व्यय की कौन कौन सी मदें थी। इन ग्रंथों के अनुसार व्यय की मदों का उल्लेख किया जा रहा है। नंबर एक, सुख नीति सार के अनुसार राजकीय व्यय। शुक्र ने राजकीय आय का कितना प्रतिशत किस मद में व्यय किया जाए, इसका उल्लेख शुक्र के अनुसार जो मनुष्य अपनी विद्या को समाप्त कर चुके हों उन्हें कार्य में नियुक्त किया जाए। जो मनुष्य विद्या एवं कला में उत्कृष्टता रखते हों हर साल उनका सम्मान किया जाए। राजा सदैव ऐसी व्यवस्था करे जिससे राज्य में विद्या एवं कला की निरंतर उन्नति हो। राज्य में जो भी शास्त्रज्ञ वेदज्ञ आयुर्वेदिक विद्वान कर्मकांड के ज्ञाता तांत्रिक तथा अन्य बुद्धिमान व जितेंद्रिय श्रेष्ठ गुणी लोग हों उन सबका वेतन तथा दान मान द्वारा सत्कार करें। ऐसा ना करने पर राजा की अपकीर्ति होती है। शुक्र ने राजकीय व्यय का विवरण निम्न प्रकार दिया है। नंबर एक, सेना पर 50%। नंबर दो, दान पर 8%। नंबर तीन, शासन व्यय 8%। नंबर चार, उत्तराधिकारी 8%। नंबर पाँच, राज परिवार का व्यय 8%। नंबर छह, अस्थाई कोष 10%। इस प्रकार शुक्र ने राजकीय व्यय को 6 मदों में विभक्त करके प्रत्येक मद के हेतु एक निश्चित औसत की तय कर दिया है। नंबर टू कौटिल्य के अनुसार राजकीय व्यय। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का भी उल्लेख किया है जिन पर राजकोष से धन व्यय किया जाता था। कौटिल्य ने राजकीय व्यय को निम्नलिखित भागों में बांटा है। नंबर बांटा है देव पूजा, प्रति पूजा, दान, स्वास्थ्य वाचक, अंतः राजकीय, रसोई, दूत, कोष्ठागार, शस्त्रागार, पन्न गृह, कर्मांत, विष्टि, पत्ति, अश्व परिग्रह, द्विज परिग्रह, गोमंडल, पशुवाट, पक्षीवाट, ब्यालवाट, काष्ठवाट तथा तृणवाट। अर्थशास्त्र में वर्णित व्यय के संबंध में अल्तेकर का विचार है कि ये सब अधिकतर राजमहल में खर्च से ही संबंध रखते हैं। शासन के विभिन्न विभागों में होने वाले खर्च का इससे अनुमान नहीं होता है, ना इससे यही पता चलता है कि राजमहल पर होने वाला खर्च राज्य की आय का कितना प्रतिशत था। नंबर तीन हेनसांग के अनुसार राजकीय व्यय। हेनसांग ने इस बात का उल्लेख किया है कि हस्त के काल में खर्च किए जाने वाले समस्त धन को चार भागों में बांटा जाता था। पहला भाग धार्मिक कृत्यों और सरकारी कामों में खर्च होता था, दूसरा भाग बड़े बड़े सार्वजनिक अधिकारियों पर खर्च किया जाता था और चौथा भाग दान और पुण्य आदि के काम में लाया जाता था। इसके साथ ही युद्ध और प्रशासनिक व्यय में भी काफी थे। मानोसोल्लास में लिखा है कि राजकीय व्यय का 3/4 भाग खर्च किया जाना चाहिए और 1/4 भाग बचाया जाना चाहिए। निष्कर्ष उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि राजकीय व्यय की मुख्य मद थी नंबर एक सेना एवं युद्ध, नंबर टू प्रशासन एवं राजकीय अधिकारियों का वेतन, नंबर तीन जनहित के कार्य तथा सड़कों का निर्माण, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा का प्रसार, नंबर चार किसी की उन्नति के संबंध में किया जाने वाला व्यय, नंबर पाँच दान दक्षिणा, नंबर छह विभिन्न उद्योगों की उन्नति पर किया जाने वाला व्यय, नंबर सात राज परिवार का व्यय आदि। साथ ही राजा का निजी कोष भी रहता था। इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि बचत भी होती रहे। किसी मद में कितना खर्च किया जाता था इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती। शुक नीति सार में राजकीय व्यय का अवश्य विवरण किया गया है जिनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं।